धौला पुस्तक 14 लेक्चर नंबर 8। ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं। सिद्धे विरुद्धसयले अज्जत्थ बहित्थ बन्धनं मुक्के भत्तिये अहं नमिऊं पुनो पुनो बंधनम वोच्छम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गना खंड, और उसके बंधन अनियोग द्वार को हम देखते हुए अभी बंधनीय का प्रकरण चल रहा है। बंध बंधक अभी बंधनीय की चर्चा चल रही है, और उसमें हम वर्गणाओं की बात देख रहे थे। जो 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं उसमें से तो अभी हमने प्रत्येक शरीर वर्गणा तक हम आ गए हैं। प्रत्येक शरीर वर्गणा में सबसे जघन्य वर्गणा किसके होती है तो हमने देखा था कि जो क्षपित कर्मांशिक रूप से जो आया है और वो पूर्व कोटि के मनुष्य में उत्पन्न हुआ है, 8 साल और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके जो स्थित है उसके अयोगी के चरम समय में, वहां जो औदारिक शरीर उसका विश्रोपचय कारमान उसका विश्रोपचय तेजस का तेजस शरीर और उसका, तो 6 पुंज मिलकर जो एक स्कंध बना है उसको यहाँ जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गणा कहा। अब उसमें एक प्रदेश अधिक, दो प्रदेश अधिक, तीन प्रदेश अधिक, प्रदेश यानी परमाणु अधिक, इस तरह से किस तरह से घटित करके दिखाया है। तो पहले औदारिक शरीर के परमाणु उतने ही रखकर विश्रसोपचय का एक एक परमाणु बढ़ाते 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 तो वो अनंत गुणा बढ़ते तक वो बढ़ाया, फिर औदारिक शरीर का एक परमाणु बढ़ाया तो खाली अकेला वो पर नहीं, उसके साथ विश्रसोपचय बढ़ते हैं। तो पहले अकेले जो विश्रसोपचय बढ़ाए थे वैसा ही
एक परमाणु
उतना ही ये एक परमाणु अधिक और उसका विश्रसोपचय ये समान हो जाते हैं, फिर उसके विश्रसोपचय बढ़ाएंगे और फिर औदारिक शरीर का और एक परमाणु और विश्रसोपचय के 2 परमाणु अधिक वाला, इस तरह से उसके कॉम्बिनेशन बताते बताते उन्होंने उसको उत्कृष्ट तक, उत्कृष्ट यानी तत्प्रायोगिक उत्कृष्ट लेना है। तत्प्रायोगिक उत्कृष्ट क्यों? क्योंकि यहाँ हमने कारमान को और तेजस को जघन्य रखा हुआ है, वो जघन्य रखते हुए जितना उत्कृष्ट हो सकता है उतना लिया। उसके बाद तेजस शरीर के विश्रसोपचय को बढ़ाना, फिर तेजस शरीर के एक एक परमाणु को बढ़ाना, इस तरह से उसको उत्कृष्ट तक ले गए, फिर कारमान शरीर और उसको विश्रसोपचय तक, ये सब हम तीनों ही यानी 6 पुंजों को उत्कृष्ट बनाते बनाते यहाँ तक ले गए, परंतु ये उत्कर्षण और अपकर्षण के द्वारा ही उसको उत्कृष्ट बनाया है। क्योंकि योग के द्वारा जो उत्कृष्ट होता है, यानी कोई अन्य जीव लिया कि जिसने एक समय प्रबुद्ध अधिक योग से बांधा था, तो उसके भी इतने ही परमाणु हो सकते योग के द्वारा। इस तरह एक योग से बढ़ाना, फिर योग परमाणु को बढ़ाना, फिर योग से बढ़ाना परमाणु को बढ़ाना, ये तो अंतिम समय में हो रहा है। अब अंतिम समय को यानी उसके मैक्सिमम तक पहुंचाया कैसे? जो गुणित कर्मांशिक से आया था और वो भी करोड़ पूर्व की आयु में उत्पन्न हुआ, क्योंकि गुणित कर्मांशिक 7वें नरक का नारकी है, 2-3 तीर्यंचों के भव किए और फिर वो उत्पन्न हुआ मनुष्यों में पूर्व कोटि वाले, उसने भी 8 वर्ष और कुछ अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसके अयोगी के अंतिम समय में उसका द्रव्य उत्कृष्ट है। इस तरह से हमने अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखे, ये तो अंतिम समय में हुआ, फिर उपांत्य समय में, फिर उसके पूर्व समय में, उसके पूर्व समय में, ऐसे एक 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 परमाणु कितने यानी इसके कितने विकल्प हो गए आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे कहाँ तक उल्टा लाना है? तेरहवे का पहला समय, क्योंकि क्षीण कषाय के अंतिम समय में निगोद है वहां पर, तो वो निगोद वर्गणा में चला जाएगा, बादर निगोद वर्गणा का वो स्कंद होगा। अभी हम प्रत्येक शरीर वर्गणा का स्कंद देख रहे हैं, तो यहां तक लाए फिर। यानी देखो अभी हम जो पढ़ रहे थे ना पेज नंबर
14 के नीचे,
हाँ 73 पर आए थे, तो द्विचरम का आश्रय फिर इस तरह से हम नीचे लाए थे 13वें के पहले समय तक, है ना, और फिर अंतिम समयवर्ती नारकी के आधार से भी हमने बढ़ाया था। अब हम आए हैं 73 पेज पर, वहां ये बात बताई थी, इन्हें प्रश्न ऐसा पूछा गया था, कंपैरिजन कहां से कि हमने पहले समयवर्ती सहयोगी का साथ वो गुणित कर्मांशिक वाला अंतिम समय वाला लिया नारकी, उसको लिया, वहां क्या बात होती है, वो तो गुणित कर्मांशिक है और उसके तेजस शरीर और कारमा शरीर, उसने भी खिपाते खिपाते अंतिम समय में उसका जो कुछ रहा है वो तो प्रथम समयवर्ती सहयोगी की थोड़ा ही कम है और इसका थोड़ा ज्यादा है, परंतु उसमें क्या ज्यादा है, तो वैकृत परमाणु असंख्यात गुणा है, और इसके लिए उन्होंने जो अल्पभूतव बात बताई थी कि औदारिक शरीर के प्रदेशाग्र सबसे स्तोक होते हैं, वैकृत शरीर के उससे असंख्यात गुणे, आहार के उससे असंख्यात गुणे, और तेजस के अनंत गुणे और कारमान के अनंत गुणे। तो यहां तक अपनी बात हुई थी। अभी नीचे से पांचवी लाइन है, वहां से पढ़ेंगे 73 पेज पर। प्रथम समयवर्ती सहयोगी जिनके औदारिक शरीर के विसरसोपचय पुंज से अंतिम समयवर्ती नारकी के वैकृत शरीर का विसरसोपचय पुंज असंख्यात गुणा है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, बाह्य वर्गणा अनुयोग द्वार में पांच शरीरों के विसरसोपचय के कहे गए अल्पभूतव सूत्र से जाना जाता है। यथा जघन्य औदारिक शरीर का जघन्य पद में जघन्य विसरसोपचय सबसे स्तोक है। हमने इसको नंबरिंग किया था, एक नंबर हुआ, एक नंबर डाला, क्योंकि बहुत सारे हैं ना इसमें, इसलिए हमने नंबरिंग किए थे इसको। फिर दो नंबर पर, उसी जघन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विसरसोपचय अनंत गुणा है। उसी जघन्य का, ने देखो तीन बातें बताई थी, पेज पहला निकालो, जघन्य औदारिक शरीर का जघन्य पद में जघन्य विसरसोपचय है ना। अब कहते उसी जघन्य का उत्कृष्ट पद, औदारिक शरीर जघन्य रखा, उसका उत्कृष्ट पद लिया, हाँ, तो उसका विसरसोपचय अनंत गुणा है। तीसरे नंबर पर, उसी के उत्कृष्ट का, यानी औदारिक शरीर के उत्कृष्ट का जघन्य पद में जघन्य विसरसोपचय अनंत गुणा है। अब चार नंबर पर, उसी के यानी औदारिक शरीर के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विसरसोपचय अनंत गुणा है। यानी हमने जघन्य का जघन्य विसरसोपचय, जघन्य का उत्कृष्ट विसरसोपचय, उत्कृष्ट का जघन्य विसरसोपचय और उत्कृष्ट का उत्कृष्ट विसरसोपचय, ऐसे चार बातें देखिए। अब पांच नंबर, पेज नंबर 74, वैकृत शरीर के जघन्य का जघन्य पद में जघन्य विसरसोपचय अनंत गुणा है। छह नंबर पर, उसी के जघन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विसरसोपचय अनंत गुणा है। यानी विसरसोपचयों की भी संख्या जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ऐसे भेद होते हैं, है ना। अब सात नंबर, अच्छा आपके जीरोक्स है क्या? हाँ, उसी के उत्कृष्ट का जघन्य पद में जघन्य विसरसोपचय अनंत गुणा है। और आठ पर, उसी के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विसरसोपचय अनंत गुणा है। ये जो औदारिक शरीर के वैकृत शरीर के जो चार चार हले के बता रहे, जघन्य का जघन्य पद में जघन्य विश्र सोप छे, जघन्य का उत्कृष्ट पद में जो उसका विश्र सोप छे, फिर उत्कृष्ट का जघन्य और उत्कृष्ट का उत्कृष्ट, ऐसे चार और चार आठ हो गए। अब नौ नंबर पर आहारक शरीर के जघन्य का जघन्य पद में जघन्य विश्र सोप छे अनंत गुणा है। दस पर उसी के जघन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्र सोप छे अनंत गुणा है। ग्यारह उसी के उत्कृष्ट का जघन्य पद में जघन्य विश्र सोप छे अनंत गुणा है। और बारहवें नंबर पर उसी के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्र सोप छे अनंत गुणा है। पहले तो अल्पभूतो बताए थे शरीरों के प्रदेशाग्रह से शरीरों के प्रदेशाग्रह, अब यहाँ तो हम विश्र सोपचयों की बात देखे थे। औदारिक के चार देखे, वैकिरिक के चार और आहारक के चार। अब तेरह नंबर तेजस शरीर के जघन्य का जघन्य पद में जघन्य विश्र सोप चय, वो जय हुआ चय अनंत गुणा है। चौदह उसी के जघन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्र सोप चय अनंत गुणा है। पंद्रह उसी के उत्कृष्ट का वो ष्ट बराबर लिखना ट हुआ, जघन्य पद में जघन्य विश्र सोप चय अनंत गुणा है। और सोलह नंबर पर उसी के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्र सोप चय अनंत गुणा है। ये सोलह तक आ गए आहारक के विचार। क्या हुआ हाँ सातवें नंबर में लास्ट में पंद्रह नंबर आता है जो हमने उत्कृष्ट लिखा था बराबर करके। और सोलह नंबर उसके नीचे के लाइन में, नीचे से छठी लाइन में सोलह नंबर दिया था, यानी चार चार हर एक के जो हो गए ना, सोलह तक आ गए अभी हम तेजस शरीर तक। अब सत्रह नंबर पर कार्बन शरीर के जघन्य का जघन्य पद में जघन्य विश्र सोप छे अनंत गुणा है। अठारह उसी के जघन्य का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्र सोप छे अनंत गुणा है। उन्नीस उसी के उत्कृष्ट का जघन्य पद में जघन्य विश्र सोप छे अनंत गुणा है। और बीस में उसी के उत्कृष्ट का उत्कृष्ट पद में उत्कृष्ट विश्र सोप छे अनंत गुणा है। गुणकार सर्वत्र सब जीवों से अनंत गुणा है। अब एक एक परमाणु के साथ भी जीव राशि से अनंत गुणा विश्र सोपचय होते हैं। अब वो विश्र सोपचय भी जघन्य से उत्कृष्ट, वो भी जीव राशि से अनंत गुणा वाला गुणकार है। यह अल्प बहुत्व जो जीवों से रहित होते हैं उनका होता है
कि प्रत्येक शरीर के बात है
ना। हाँ
प्रत्येक शरीर
अच्छा ऊपर के हाँ गुणकार सोवत एदम अप्पा भोगम मुक्त जीवाणम न जीव सहियाणम, जो जीवों से युक्त होते हैं उनका नहीं होता, अन्यथा विश्रसोपचय प्रधान उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा से विश्रसोपचय प्रधान जघन्य बादर निगोद वर्गणा के अनंत गुणे हीन होने का प्रसंग आता है। क्या कहना चाहते हैं, जीवों से रहित यानी वो तो प्रत्येक शरीर की बात है, यहाँ पर प्रत्येक शरीर वाले निगोद से रहित जीवों से रहित यानी निगोद से रहित। प्रत्येक शरीर वाले ऐसा ही लेना है, अभी तो यहाँ हम केवली की बात करें, बाद में एक इंद्रियों की भी बात उठाएंगे।
पे ये जो 75 पेज पे जो बताया ना
75 पर अभी कहाँ
अभी हमने पहली लाइन पढ़ी ना।
हाँ
उत्कृष्ट प्रतीक शरीर वर्गना से विश्व सबसे प्रधान जगन्य बाधा वर्गना के अनंत गुण का प्रसन्न रहेगा, तो ये इसे बता रहे कि उनका अनंत गुण नहीं होता है निगोद का,
नहीं होगा ना जघन्य उससे अनंत गुणा नहीं होगा, होगा वो अनंत गुणा होगा, परंतु अगर यहाँ हम उसको नहीं मानेंगे तो अनंत गुणाहीन हो जाएगा, क्योंकि उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना से जघन्य बादर निगोद वर्गना अनंत गुणी होनी चाहिए, परंतु अगर हम यहाँ उसको अगर प्रत्येक शरीर में ही बादर को भी इंक्लूड करेंगे तो वो जघन्य है उसकी अनंत गुणाहीन हो जाएगी। क्योंकि बादर निगोदों के अपने अपने औदारिक शरीर के अपने तेजस्वी, वो तो बढ़ जाएगी ना। बादर निगोद वर्गना इतने अनंत जीवों की अपने अपने तेजस कारमान की सब बढ़ने चाहिए, वो अनंत गुणा होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर उसको निगोद से सहित अगर मानते हैं तो यहाँ वो औदारिक पुंज बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ प्रत्येक शरीर वालों का ही लेना है केवल।
और इस पे हम लोग जब भी कंपैरिजन करते हैं निगोद के साथ, तो एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, तो वो एक शरीर के साथ अनंत जीव का लेना पड़ेगा
नेचुरली, सबका लेना पड़ेगा। अब जब हम वो निगोद वर्गना देखेंगे ना, उसमें देख लेते हैं।
ये जीवों से युक्त,
परंतु जीवों से युक्त में वो वैकरेक को भी क्यों लिया है? पर जब जीवों से युक्त होते हैं तो यहाँ निगोद को नहीं लेना है। जीव सहयानम पुनः अपगोगम,
जीवों से युक्त का भी आ रहा है ना।
हाँ, पर जीवों से युक्त में वैकरिक शरीर फिर ले रहे हैं।
नहीं नहीं, अभी तक तो जीवों से युक्त नहीं, तो उनका ही वही
होगा। अभी जीवन से रहित वाले की बात बताए, अभी जीवन से युक्त की बात बता रहे, परंतु जीवन से युक्त में निगोद की बात नहीं लेनी है वैसे पर। वो कुछ अलग होगा, ये अल्प जो जीवन से रहित होते उनका है।
तो प्रत्येक लिखते थे
नहीं, यहाँ तो ठीक लगता है, पर आगे जो अल्पभूतवा आने वाला है। औदारिक शरीर के निगोद युक्त, फिर उससे वैकरिक लेना। अच्छा ठीक है, देखते हम क्या क्या देखते। देखो जो जीवों से युक्त है उनका अल्पभूतव आगे कहते हैं, पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा। 75 पेज यहीं पर, फिर दूसरा अल्पभूतव हम 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। औदारिक शरीर का जघन्य विसरसोपचय सबसे स्तोक है।
औदारिक शरीर ये भी जीवों से युक्त है तो वो सभी का लेने का साथ।
अभी अभी फिर पढ़ना, बाद में हम उसके इन्फरेंस निकालेंगे। उसी का उत्कृष्ट विसरसोपचय असंख्यात गुणा है। देखो वहाँ अनंत गुणा था, यहाँ असंख्यात गुणा लिखा है। पहला अल्पभूतव में जघन्य का जघन्य पद में जघन्य विसरसोपचय लिया था, और उसकी उसी के उत्कृष्ट वगैरह वगैरह लिया था। क्या कहते हैं? औदारिक शरीर का जघन्य विसरसोपचय सबसे स्तोक है। उसी का उत्कृष्ट विसरसोपचय असंख्यात गुणा कहा, वहां अनंत गुणा था प्रत्येक एक एक से दूसरा दूसरा। गुणकार क्या है? पल्ल्योपम का असंख्यातवा भाग गुणकार है। तीन नंबर पर वैकरिक शरीर के संपूर्ण प्रदेश पिंड में सबसे जघन्य विसरसोपचय असंख्यात गुणा है।
समझ में नहीं आया, ये जो दूसरा पॉइंट बताए ना, उसी के उत्कृष्ट विसरसोपचय असंख्यात गुणा है, तो ये निगोद वाले औदारिक शरीर की बात है।
अभी मैं क्या कह रही हूँ, आप निगोद की बात यहाँ मत लाओ, पहले हम पूरा पढ़ते हैं और फिर इन्फरेंस निकालते हैं। वही तो मैंने बात बताई आपको, है ना। और उस जो अल्पभूतव से इस अल्पभूतव को हम बाद में कंपेयर करेंगे। वहाँ अनंत गुणा, अनंत गुणा हर एक, वन एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, सारे अनंत गुणे थे। अब यहाँ जो है औदारिक शरीर का जघन्य विसरसोपचय सबसे स्तोक बताया, उसी का उत्कृष्ट विसरसोपचय असंख्यात गुणा लिखा है, और वो पल्ले के असंख्यात वे भाग गुणा है। अब कहते हैं वैक्रियक शरीर के संपूर्ण प्रदेश पिंड में सबसे जघन्य विसरसोपचय असंख्यात गुणा है, यानी एक एक परमाणु के साथ ने पूरा प्रदेश पिंड लिया और उसका जघन्य विसरसोपचय, वो गुणकार क्या है? तो जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणकार है। उसी का उत्कृष्ट विसरसोपचय असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? पल्ल्योपम का असंख्यातवा भाग गुणकार है। फिर आहारक शरीर के संपूर्ण प्रदेश पिंड में सबसे जघन्य विसरसोपचय असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणकार है। उसी का उत्कृष्ट विसरसोपचय असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? पल्यपुंग का असंख्यात्वा भाग गुणकार है। अच्छा, अभी कुछ ख्याल में आ रही बात फिर भी पूरा पढ़ते हैं। तेजस शरीर के संपूर्ण प्रदेश पिंड में सबसे जघन्य विसरसोपचय अनंत गुणा है। गुणकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग गुणकार है। आठ नंबर पर उसी का उत्कृष्ट विसरसोपचय असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? पल्यपम का असंख्यात भाग गुणकार है। अपने अपने जघन्य से अपना अपना उत्कृष्ट असंख्यात गुणा कहा। अब नौवा नंबर पर कार्मन शरीर के प्रदेश पिंड में जघन्य विसरसोपचय अनंत गुणा है। गुणकार क्या है? तेजस शरीर गुणकार है। कौन सा? वो अभव्यों से अनंत गुणा ऊपर बताया था ना, और सिद्धों का अनंत भाग, यही गुणकार यहाँ पर भी है। हाँ, तेजस शरीर के समान बराबर, परंतु ऊपर तेजय गुणकारो ही लिखा था। तेजस शरीर गुणकार यानी तेजस शरीर के लिए जो अनंत वाला गुणकार लिखा था वही यहाँ पर भी है। और दसवें नंबर पर उसी का उत्कृष्ट विसरसोपचय असंख्यात गुणा है। गुणकार क्या है? पल्यपुंग का असंख्यातवा भाग गुणकार है। इस कारण से प्रथम समयवर्ती सहयोगी जिन के औदारिक आदि छह पुंज द्रव्य के साथ वैक्रिक आदि छह पुंज का द्रव्य समान है। प्रथम समयवर्ती सहयोगी जिनके औदारिक आदि छह पुंज द्रव्य के साथ वैक्रिक आदि छह पुंज का द्रव्य समान है। वो वैक्रिक आदि वो क्यों कहा? ये नारकी का, क्योंकि बात वहीं से निकली थी। जरा पीछे चलो, पेज नंबर 72 पर वहां पहले हमने नीचे पीछे उतार कर सयुगी के पहले समय की बात की थी, और उसके बाद सातवीं पृथ्वी का गुणित कर्मांशिक लिया था, और वहां बताया था कि उसके चार प्रदेश पुंज की अपेक्षा यहाँ क्या होता है। वैकिरिक शरीर के पुंज जो परमाणु पुंज है और उसके विसरसोपचय सहित जो बात बताई है, तो वहां दोनों की समानता हो जाती है। इन अल्पभूत से ये बात सिद्ध की उन्होंने। औदारिक के छह पुंज लिए और वैकिरिक के छह पुंज लिए। औदारिक से वैकिरिक का असंख्यात गुणा होने पर भी वो तेजस कारमाण वहां कम हो जाता है, इसलिए दोनों के पुंजों की समानता हो जाती है। ये उनको सिद्ध करना है। अब यहाँ जो बात बताई ना, ये जीवन से सहित और रहित वाली बात, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ निगोद वाली बात है। फिर भी यानी वो जीव उसमें है, और फिर ये जो उन्होंने केवल केवल उसके शरीर और उसके परमाणु विसरसोपचय इतनी चर्चा की, परंतु जीवों से सहित वाले जो वो उसका जो अल्पभूत है वो अलग है।
नहीं, जीवों से सहित पे क्या लेना?
अभी जीव उसमें लेना, वो सहयोगी और ये नारकी है। अभी उन्होंने किस तरह से वो पहले वाला रहित वाले में क्या कहना चाहते वो बात क्लियर नहीं हुई है, परंतु जो जीवों से युक्त है उनका अल्पभूत्व कहते हैं, यानी जिसको कहेंगे कि जीव है वहां पर और उसके शरीर के परमाणु का अल्पभूत्व बता रहे। हमने पहले जो शरीर में जो अल्पभूत्व देखा था, औदारिक शरीर से वैकिरिक शरीर के परमाणु असंख्यात गुणे होते हैं, ये अल्पभूत्व हमने पहले देखा था, वही अल्पभूत्व यहाँ लगा रहे। देखो पेज नंबर 73 पर शंका, ये किस प्रमाण से जाना जाता है ये बात पूछा था ना। आज का लेक्चर शुरू किया उसके ऊपर का पैराग्राफ, केवल वहां शरीरों के प्रदेश आग्रह का अल्पभूत बता था। औदारिक शरीर से वैक्रिय का संख्यात गुणे, उससे आहार का संख्यात गुणे, तेजस अनंत गुणे और कारमान अनंत गुणे। अब यहाँ जो बता रहे उसके साथ उसका विसरसोपचय लेना है, तो औदारिक शरीर का जघन्य और उसी का उत्कृष्ट असंख्यात गुणा, उससे वैक्रिय का असंख्यात गुणा, इस तरह से और औदारिक से जो वैकिरिक का असंख्यात गुणा कहा वहाँ जगत श्रेणी का असंख्यात भाग कहा, जो यहाँ पर अल्पभूत्व 73 पे भी जगत श्रेणी का असंख्यात भाग था। पर हरेक शरीर के अपने अपने जगन से अपना अपना उत्कृष्ट पल्ले के असंख्यात विभाग बताया विसर सोपचे के लिए। यानी जो शरीरों का अल्पभूत्व है वही देखो 2 से 3 में गुणकार जगत श्रेणी का असंख्यात भाग था, औदारिक के उत्कृष्ट से वैकिरिक का जघन्य, यानी संपूर्ण प्रदेश पिंड लिया है। और यहाँ पर जो देखते थे ना जघन्य औदारिक शरीर का जघन्य पद में जघन्य, अभी उसमें जो जीवन से रहित है ने केवल वो बरगणा के रूप में लिया किस तरह से रूप में वो ख्याल में नहीं आ रहा है मेरे, परंतु वहां निगोद की बात नहीं है ये नक्की है। और यहाँ जीव के आधार से जो शरीर है या शरीर के आधार से जीव तो उनका जो संयोग रूप अवस्था में ये उसका अल्पभूत्व अलग है। जो हमने शरीरों का अल्पभूत्व देखा था वही है यहाँ पर, पर यहाँ उसके साथ उसके विसर सोपचय को इंक्लूड कर दिया है। अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपके जो प्रश्न है वो अभी थोड़ा गौण करके आगे बढ़ते हैं। 76 पेज पर आते हैं।
यहाँ पे एक प्रश्न क्यों आ रहा है कि ये तेजस शरीर से हमने हमेशा देखा है कि कार्मण शरीर अनंत गुणे होते हैं,
होता है ना, यहाँ बताया ना अनंत गुण,
पर यहाँ पे अनंत गुण नहीं बताया,
कहाँ नहीं बताया,
तेजस शरीर के विश्व चौपड़ी जगन पेज 75 और दूसरा पैराग्राफ है उसमें से नीचे से
नंबरिंग बोलो
7 नंबर का तेजस शरीर का संपूर्ण प्रदेश पिंड में सबसे जगन्य विश्व अनंत गुण,
अनंत गुणा का किससे आहारक शरीर से,
शरीर हाँ। से। हाँ, वो तो बराबर है
बराबर। फिर
उससे कार्मण शरीर के प्रदेश पिंड में जगन्य विश्व अच्छा अनंत गुण ही लगता है,
तेज शरीर भी अनंत गुणा है और कार्मण भी अनंत गुणा है।
हाँ।
9 नंबर पर,
अच्छा ये 10 नंबर में मैं उल्लेख किया था,
10 नंबर है वो कार्मण के जगन्य से कार्मण का उत्कृष्ट है वो असंख्यात गुणा था। हमने बोला हरेक के अपने अपने जगन्य से अपना अपना उत्कृष्ट असंख्यात गुणा है। और यहाँ संपूर्ण प्रदेश पिंड ले लिया है और वहाँ कुछ अलग बात वहाँ बताना चाहते हैं, वो जीवन से रहित वाली बात है और यह जीव सहित बात है, यानी वहाँ निगोद वाली बात ली ही नहीं है, बस इतना ही कहना है। अब 76 पेज पर आते हैं, यानी ये जो जीव सहित बात है इसलिए सहयोगी का पहला समय और यहाँ नारकी का अंतिम समय इनकी कंपेरिजन करके वो 6 प्रदेश पुंज में हमको 1 परमाणु बढ़ाना है, इसके लिए उन दोनों की कंपैरिजन की और ऐसा यहाँ पर भी स्थान होता है ये बताए। अब आगे बढ़े 76 पेज पर, अभी हमको 3rd लाइन वहां से पढ़ना है। अब अन्य जीव के द्वारा वैक्रिय शरीर के विसरसोपचय पुंज में 1 परमाणु अधिक करने पर, देखो पहले क्या नक्की किया, सहयोगी का पहला समय और वो नारकी का अंतिम समय, इस तरह से वो बढ़ाया या कम किया कि दोनों के प्रदेश पुंज समान होते हैं। अब अन्य एक जीव लेना तो उसमें अभी वो सहयोगी को छोड़कर, क्योंकि उसके उसकी समानता बताइए, अब ये वैकिरिक के वाला है उसके में उसमें बढ़ाना अभी, क्योंकि सहयोगी में अभी बढ़ाने का कोई चांस नहीं, वो मैक्सिमम तक पहुंच गए थे, वैसा ही वो नारकी को अंतिम समय में सिद्ध कर दिया। अब कहते अन्य जीव के द्वारा वैकिरिक शरीर के विसरसोपचय पुंज में 1 परमाणु अधिक करने पर सहयोगी जन के प्रथम समय के उत्कृष्ट द्रव्य के ऊपर 1 परमाणु अधिक होकर अन्य अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। हमें तो यही नक्की करना है कि जो अलग अलग रीति से एक एक परमाणु हम कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले तो हमने सहयोगी के अंतिम समय से अयोगी के अंतिम समय से लेकर सहयोगी के पहले समय तक उत्कर्षण अपकर्षण से बढ़ाया, कभी योग से बढ़ाया, इस तरह से यहाँ तक आ गए। फिर वैसा ही उतनी ही क्वांटिटी नारकी के अंतिम समय में भी सिद्ध की। अब यहाँ पर उसके विसरसोपचय एक एक परमाणु से बढ़ाते बढ़ाते ले जाना। हाँ, देखो तीसरी लाइन नए पैराग्राफ की, इस प्रकार एक एक परमाणु अधिक के क्रम से वैकिरिक शरीर के विसरसोपचय पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे विश्र सोपचय परमाणु होने तक बढ़ाने चाहिए।
ये भी अंतिम समय वाला है।
हाँ वहीं पर अनंतर वैकृत शरीर को एक परमाणु अधिक करके पहले उसके विश्र सोपचय बढ़ाओ, फिर उतने ही परमाणु किसी अन्य जीव के वैकृत का एक परमाणु अधिक है तो उसमें वो विश्र सोपचय सब उसके साथ आ ही जाएंगे, उतने ही उसके होते हैं। फिर से अनंतर वैकृत शरीर को एक परमाणु अधिक करके तथा उसी के विश्रसोपचय पुंज को सब जीवों से अनंत गुणे विश्रसोपचय परमाणुओं से अधिक करके स्थित हुए अन्य जीव के उस समय पहले उत्पन्न हुए स्थान से सांप्रतिक स्थान एक परमाणु अधिक होता है। यानी वो बढ़ाए हुए विश्रसोपचय को भूल जाओ, केवल एक परमाणु औदारिक शरीर सॉरी वैकृत का बढ़ाया तो उसके साथ उसके अपने जघन्य विश्रसोपचय का पुंज आ गया। कारण सुगम है। इस प्रकार उक्त विधि से अपने उत्कृष्ट द्रव्य के प्रमाण को प्राप्त होने तक वैकृत शरीर के दो पुंज बढ़ाने चाहिए। जो हमने गुणित कर्मांशिक रूप से देखा था वहां तेजस कारमान की उत्कृष्ट थी, उसमें तो वैकृत शरीर के उत्कृष्ट नहीं लिया था, वैकृत शरीर को जघन्य लिया था, अब उसमें उत्कृष्ट तक बढ़ाया तो वैकृत शरीर के दो पुंज ने वैकृत शरीर का और उसके विश्रसोपचय का। अनंतर अपने विश्रसोपचय के साथ वैकृत शरीर के द्रव्य को उत्कृष्ट करके अब उसी नारकी का अंतिम समय ही चल रहा है। अब वैकृत के दो पुंज तो उत्कृष्ट कर दिए, पुनः तेजस शरीर के विश्रसोपचय पुंज को एक परमाणु अधिक करके स्थित हुए एक अन्य जीव के उस समय अन्य अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार तेजस शरीर के विश्रसोपचय पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे विश्रसोपचय परमाणुओं की वृद्धि होने तक एक एक परमाणु की उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाना चाहिए। अनंतर पूर्व में विवक्षित हुए तेजस शरीर को एक परमाणु अधिक करके, यानी वही पद्धति है, पहले विश्रसोपचय का बढ़ाओ और फिर विश्रसोपचय को कम करो और वैकृत शरीर का परमाणु बढ़ाओ तो उसके अपने विश्रसोपचय आ गए उसके साथ। तो क्या कहते हैं फिर नीचे से चौथी लाइन, अनंतर पूर्व में विवक्षित हुए तेजस शरीर को एक परमाणु अधिक करके तथा उसी के विश्रसोपचय पुंज को सब जीवों से अनंत गुणे विश्रसोपचय परमाणुओं से अधिक करके स्थित हुए जीव के प्राप्त हुआ यह स्थान अनंतर पिछले स्थान से एक परमाणु अधिक होता है। इस प्रकार तेजस शरीर के दो पुंजों में तब तक वृद्धि करना चाहिए जब तक ये उत्कृष्टपने को नहीं प्राप्त हो जाते हैं। पुनः एक ऐसा नारकी लो जो वैकृत शरीर और तेजस शरीर को उत्कृष्ट करके पुनः कारमान शरीर के विश्रसोपचय पुंज में एक परमाणु अधिक करके स्थित है, तब अन्य अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक एक परमाणु की तब तक वृद्धि करते जाना चाहिए जब तक कारमान शरीर के विश्रसोपचय पुंज में सब जीवों से अनंत गुणे विश्रसोपचय परमाणुओं की वृद्धि नहीं हो जाती, यानी मैक्सिमम तक नहीं पहुंचता है। अनंतर एक ऐसा अन्य जीव लो जो पूर्व निरुद्ध कारमन शरीर में एक परमाणु अधिक करके पुनः उसी के विश्रसोपचय पुंज को सब जीवों से अनंत गुणे विश्रसोपचय परमाणुओं से अधिक करके स्थित है, तब यह स्थान अनंतर पिछले स्थान से एक परमाणु अधिक होता है। पुनः इस विधि से गुणित कर्मांशिक नारकी जीव के अंतिम समय में सर्वोत्कृष्ट द्रव्य के प्राप्त होने तक कारमन शरीर के दोनों पुंजों को उत्कृष्ट करना चाहिए। समझ में ना, वो तो एक एक पुंज कैसे बढ़ाना, वो तो छह पुंज उत्कृष्ट कर दिया। शंका, वैकृत शरीर के विश्रसोपचय से आहारक शरीर का विश्रसोपचय असंख्यात गुणा है, इसलिए प्रमत्त संयत गुण स्थान में आहारक तेजस और कारमान शरीर के छह पुंज ग्रहण करके प्रत्येक शरीर वर्गणा एक जीव संबंधी क्यों नहीं कही, उसका समाधान। प्रश्न समझ में आई ना? क्योंकि जैसे औदारिक से वैकिरिक असंख्यात गुणा होता है, वैसे उससे असंख्यात गुणा आहारक हो जाएगा। कहते नहीं, क्योंकि अंतिम समयवर्ती नारकी को छोड़कर तेजस और कारमान शरीर का अन्यत्र उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि उसका उत्कृष्ट किया था आहारक शरीर वाले को, तो छठे गुण स्थान में तो उसके तो वहां तो कर्म अधिक से अधिक हमने इकट्ठा किया, वो ऐसा जीव लिया, बहुत बार संकलेश किया, बहुत बार वगैरह गुणित कर्म आवश्यक। और ये तो अभी मुनिराज है, तो उनके इतने उसका संचय नहीं होगा, तो उत्कृष्ट नहीं होता। जहां पर तेजस और कारमान शरीर जघन्य होते हैं, वहां पर प्रत्येक शरीर वर्गना सबसे जघन्य होती है, क्योंकि आहारक शरीर तो असंख्यात गुणा होगा और तेजस कारमान तो अनंत गुणा का डिफरेंस होगा। इसलिए जहां तेजस और कारमान जघन्य है, वहां प्रत्येक शरीर वर्गना भी जघन्य होगी। और जहां पर इनके उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध होते हैं, वहां पर प्रत्येक शरीर वर्गना उत्कृष्ट होती है। यानी वो नारकी की मात उसके साथ वो आहारक को नहीं कंपेयर कर सकते। यानी एक एक प्रदेश बढ़ाने के लिए वैक्रेक के बाद हम आहारक को नहीं ले सकते, बस इतनी बात है यहाँ पर। परंतु प्रमत्त संयत मनुष्यों के प्रत्येक शरीर वर्गना उत्कृष्ट नहीं होती, क्योंकि उनके गुणश्रेणी निर्जरा के द्वारा और अधस्थिति गलना के द्वारा तेजस और कार्मन शरीर का द्रव्य गलित हो जाता है। वहां तो अपकर्षण भी चल रहा है ना, गुणश्रेणी की निर्जरा भी चल रही है, तो उसका बहुत सारा द्रव्य गलित हो रहा है।
तो यहाँ पे ये जो प्रबत संयत के जो प्रत्येक शरीर वर्गना उत्कृष्ट नहीं होती, वो निगोद के छोड़कर बताइए।
आहारक शरीर में निगोद होते ही नहीं है। आहारक शरीर का जो स्कंद हुआ है ना,
उसकी बात,
तो उसमें आहारक है, तेजस है, कारमान है। आहारक के साथ उसका विश्रसोपचय और अन्य दो के साथ, तो सबका मिलकर जो एक स्कंद हुआ है, उसको भी प्रत्येक शरीर वर्गना ही कहेंगे। परंतु वहां उत्कृष्ट नहीं है, वे ये बात बताने चाहते हैं। तो इसीलिए क्यों नहीं उत्कृष्ट, उसकी चर्चा चल रही है कि वहां गुणश्रेणी के निर्जरा के द्वारा और जो नीचे अधस्थिति गलना के द्वारा एक एक निषेक बिखिर रहा है और वो गुणित प्रमाण से भी उसको निकल रहा है, तो तेजस और कार्मन शरीर का द्रव्य गलित हो जाता है। अब कोई ऐसा प्रश्न पूछता है, यदि कहा जाए कि गलित हुए तेजस और कार्मान शरीर के द्रव्य से आहारक शरीर की द्रव्य वर्गणाएं बहुत होती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि है उनके अनंत में भाग प्रमाण होते। हमने देखे थे शरीर का जो प्रमाण देखा था, औदारिक से वैक्रिक असंख्यात गुणा, उससे आहारक के जो होते वो असंख्यात गुणा और आगे के अनंत गुणा, अनंत गुणा प्रदेश परमाणु। तो कहते जो गल गया है वो तो अनंत अनंतों में, तो उससे आहारक शरीर के ज्यादा हो गए कहना ठीक नहीं है, वो तो उससे अनंत गुणाहीन है। अतः प्रमत्त संयत गुण स्थान में प्रत्येक शरीर वर्गना उत्कृष्ट नहीं होती। यानी वो प्रत्येक शरीर वर्गना तो है, पर उसको उत्कृष्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि हम एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए नारकी के अंतिम समय में हमने देख लिया था। अब नया पैराग्राफ, यहां पर कर्म स्थिति काल के भीतर संचित हुए 8 प्रकार का कर्म प्रदेश समुदाय की कार्मन शरीर संज्ञा है। कार्मन शरीर किसको कहना है यहां पर? ये जो कर्म स्कंध जो हुआ है 8 कर्मों का, 66 सागर काल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की तेजस शरीर संज्ञा है, क्योंकि तेजस शरीर को यहां 9 कर्म कहेंगे हम। 66 सागर के काल के भीतर क्यों लिया, बोलो? 66 सागर की उत्कृष्ट स्थिति, ये सॉरी, तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर है। जैसे कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागर है, वो 66 सागर जो है वो तेजस की उत्कृष्ट स्थिति है। ये हमने जीव कांड में ही पढ़ा था।
अच्छा, मैंने लिखा भी है।
ये तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति, जैसे हम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति देखते हैं, कर्म स्थिति प्रमाण ऊपर लिखा है, कर्म स्थिति यानी कितना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और 66 सागर ये तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति है। ये बात हुई थी ना जब मैंने वो करुणानिधि परिजय पुस्तक लिखी थी, उसमें ये बात लिखी थी प्रत्येक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। तो अवतारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है अश्विन भाई? तीन पल्ले। वैक्रे की 33 सागर। आहार की
66 सागर। आहार की, अच्छा सॉरी,
अंतर्मुहूर्त, आहारक शरीर अंतर्मुहूर्त टिकता है ना। हाँ, फिर तेजस शरीर की 66 सागर ये लिखा है ना, और कारमान शरीर की 70 कोड़ा कोड़ी, कर्म स्थिति कहेंगे हम इसको। तो फिर हम जब जयपुर शिविर में गए थे, वो तो देवलाली में विमोचन हुआ था अपनी पुस्तक का, तो जयपुर बाद में वो शिविर था वहां पर, तो उसमें गए थे, तो यशपाल जी ने उनको, राजमल जी भोपाल वाले, उनके साथ चर्चा करके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगाए थे, ये कहाँ से निकाला आपने, किधर से लिखा 66 सागर। उन्हें बोला देना हमको, जीव कांड के आधार से वो पुस्तक लिखी है। तो आधे घंटे के अंदर उनके 22-25 कुछ क्वेश्चन मार्क लगाए थे, तो सबको उसमें से ये भी एक पॉइंट था 66 सागर, और उसमें वो योग मार्गणा में आते हैं ना शरीरों का वर्णन, उसी में से ये निकाल के बताए उनको, देखो यहाँ ये लिखा हुआ है पुस्तक में 66 सागर तेजस की उत्कृष्ट स्थिति। फिर से देखो, यहाँ कर्म स्थिति काल के भीतर संचित हुए 8 प्रकार का कर्म प्रदेश समुदाय की कारमान शरीर संज्ञा है। 66 सागर काल के भीतर हेलो, हाँ, यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले कोई कर्म बांधा है, उसके तो उसके कुछ परमाणु वहां पड़े हैं ना, तो इतने काल में संचित हुए ऐसा कहा, यानी 70 कोड़ा को उस समय से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी के जो अंत समय है वहां तक प्रत्येक समय में समय प्रबद्ध बंधा है, और हर एक समय प्रबद्ध का कुछ न कुछ अंश वहां विद्यमान है, वो सबका मिलकर जो है उसको कारवान शरीर संज्ञा का। पेज नंबर 78, नया पैराग्राफ 78, 78। कारमान शरीर किसको कहना? तो 8 प्रकार के कर्म समूह, परंतु तो अलग अलग समयों में बंधा है ना, उसमें से कितना खिर गया और कितना रुक वो वहां पड़ा है, जिसको हम डेढ़ गुना निगुना समय प्रबद्ध कहते हैं, परंतु उसमें क्या क्या है, तो कर्म स्थिति प्रमाण जो अलग अलग उसमें उसमें जो संचित है, संचित है ने उसमें से खिर भी गया है कितना, पर इतना हर समय प्रबद्ध कुछ न कुछ अंश वहां पड़ा है, इस सबका इकट्ठा जो है उसको कहेंगे कारमान शरीर। दूसरा पॉइंट क्या बताया, 66 सागर काल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की तेजस शरीर संज्ञा है, उसको तेजस शरीर कहा। 66 सागर इसलिए लिखा है, वो तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति है, जैसे कर्म कितना उत्कृष्ट बनता है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, हाँ तेजस शरीर भी कम ज्यादा बनता है, परंतु मैक्सिमम उसके 66 सागर पहले बंधे हुए कुछ परमाणु रहेंगे उसके। अब 33 सागर काल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की वैक्रिक शरीर संज्ञा है, क्योंकि देखो जो वैक्रिक शरीर वाला हुआ और मान लेते रुजु गति से वो उत्पन्न हुआ, तो पहले समय में एक समय प्रबद्ध लिया, उसके निषेक रचना हुई 33 सागर की, और उसके एक एक निषेक गलता गया, दूसरे समय में और एक समय प्रबद्ध लिया, तीसरे हर समय में ले रहा है, और हर समय के एक एक निषेक हर समय गल ही रहा है, तो अंतिम समय में वैकरिक शरीर के जो प्रदेश पुंज होगा वो मैक्सिमम होगा वहां पर, क्योंकि हर एक समय प्रबद्ध का एक निषेक वहां पड़ा ही पड़ा है, इसलिए कहते 33 सागर में जो संचित हुए हैं उसको वैकरिक शरीर संज्ञा है। क्षुल्लक भव ग्रहण काल से लेकर, हाँ सारे मिलकर, वो मैक्सिमम की बात बताने नहीं यहाँ पर,
33 सागर के अंत में जो नाकिया देव जो बंद करता है वैक्विक शरीर का,
हाँ
वो कितना कितना होगा,
कितना है ना
उसकी स्थिति कितनी बनेगी,
एक समय की,
एक समय की बनेगी,
पूरा समय प्रबद्ध ही पड़ा है वहां पर, और समय प्रबद्ध ही नेक समय में जीव ही छोड़कर चला जाएगा, पर उसका वो शरीर कहलाए ना, शरीर के एक पूरा समय प्रबद्ध उसने ग्रहण किया है, और ग्रहण किया है नेक समय में जीव ही नहीं रहा वहां पर, तो पहले समय से ग्रहण किए हुए हरेक समय का एक एक कुछ न कुछ उसका रहा था। उपांत समय में जो समय प्रबद्ध ग्रहण किया उसके दो ही निषेक बने थे, यानी उसके करीबन आधा समय प्रबद्ध वहां है, ऐसे उल्टे क्रम से चले जाओ, इसलिए उसको ये मैक्सिमम किसको कहना है उसकी बात है। छूट गए वो उसको नहीं लेना, अभी जो वर्तमान में वहां वैकृत शरीर रूप से जो विद्यमान है उसको बताना है, क्योंकि जो छूट गए वो अभी उसको वैकृत शरीर रूप से कहां है, उसको अन्य जो कुछ परिणमन होना है वो हो चुका है। हाँ संचित हुए, संचित यानी वो जो छूट गए उसको संचित नहीं कहेंगे ना हम, वो तो निकल गए वहां इकट्ठे रूप से चाहिए हमको, जैसे कर्म स्थिति के काल के भीतर संचित हुए ने जो निकल गए कर्म परमाणु उसको तो नहीं लेते, वहां जो विद्यमान है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले वाला एक निषेक वाक्य ऐसा भी हम वहां ले सकते, कभी कभी एक परमाणु ऐसा भी ले सकते हैं वहां पर, वो हमने सभी उसकी चर्चा की थी। हाँ हाँ उसमें जो परमाणु अवेलेबल है उस रूप से, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल, देखो मैक्सिमम पॉसिबल कितने काल, क्योंकि हमको 70 कोड़ा कोड़ी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है, तो वो कर्म स्थिति के भीतर हर समय में जो जो एक एक समय प्रबद्ध लिया है उसका कुछ न कुछ अंश वहां अवेलेबल है, इसलिए अभी हम वर्तमान में हम कंसिडर करेंगे, तो वर्तमान में किसी का हमको कारमान शरीर कितना है कहेंगे, तो अभी वर्तमान में उसके कितने है, आठों कर्म है उसके, सत्ता में आठों कर्म है, तो आठों कर्मों में कुछ तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले बांधे हुए भी परमाणु कुछ पड़े हैं, नेक्स्ट समय में बांधे हुए, नेक्स्ट समय में, अभी इस समय में बांधे हुए तो पूरा समय प्रबद्ध पड़ा है, इस तरह से सबका जो टोटल होगा उसको जिसको हम डेढ़ गुना निगुणित समय प्रबद्ध कहते हैं उतना ये उसका उत्कृष्ट संचय कहलाएगा। सत्तर कोड़ा कोड़ी तैतीस सागर आयु को नहीं लेना है, 33 सागर वैकृत शरीर के लिए लेना है। हाँ क्योंकि वैकृत शरीर के परमाणु 33 सागर के हर समय में ग्रहण किए हैं। मिलकर ही है, परंतु हर समय में ग्रहण किए हैं, परंतु अंतिम समय में कितना रुका है उसका संचय किसको कहेंगे, जो छूट गया उसको संचय कहेंगे। काल इसलिए बताया कि वो हर समय प्रबद्ध का कुछ न कुछ अंश वहां पर विद्यमान है। मान लेते 33 सागर के बदले,
पहले समय में 33 सागर के पूरे बांधे,
33 सागर के बदले हम 10 ही समय लेते, यहाँ जो समय प्रबद्ध बांधा पहले समय में 10. तो इसका लास्ट में एक बाकी है, वो 1/10 है, यहाँ जो बांधा उसके जो बने
2/10
वो 1/9 है, यहाँ जो बांधा 1/8 है, अभी ऐसा करते करते पूरा एक प्रमाण है इनकी, ये जो सब मिलकर यहाँ वैकृत शरीर का संचित द्रव्य है, क्योंकि उस समय वो बाकी तो सब निकल गए हैं, यहाँ इसका एक गया, फिर ये दो गए, फिर ये तीन गए, फिर ये चार गए, इस तरह से जाते रहे, संचित कितना है, जो है उसको संचित कहेंगे, और जो पहले समय का जो लास्ट अंश बाकी है बाद में बंधे हुए का बहुत बड़ा बड़ा अंश बाकी रहता है, क्योंकि वो कम काल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अब जो उपांत समय में बंधा है उसके तो दो ही निषेक बने, तो उसका आधा समय प्रबुद्ध वहां पड़ा है। ख्याल में आती है बात, ये सबका मिलकर संचित कहलाएगा। तो वैकृत शरीर में जो वैकृत शरीर की उत्कृष्ट स्थिति है कितनी होती है, 33 सागर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तेजस के लिए 66 सागर और कर्मान शरीर के लिए कर्म स्थिति प्रमाण। अब औदारिक शरीर संज्ञा किसको कहेंगे, क्षुल्लक भव ग्रहण काल से लेकर यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक की बात करने कर रहे, 3 पल्यकाल के भीतर संचित हुए 9 कर्म प्रदेश समुदाय की औदारिक शरीर संज्ञा है। मिनिमम आयु से लेकर मैक्सिमम आयु तक ले लिए उनको, यानी जो क्षुल्लक भव वाले हैं उनके उतने काल के भीतर संचित हुए उसको औदारिक शरीर संज्ञा कहेंगे। वैसे 33 सागर में अलग अलग यानी 10,000 से इतना ऐसा अलग से नहीं लिया है, उत्कृष्ट ही लिया है। हाँ, आहारक शरीर किसको कहना, सॉरी औदारिक शरीर संज्ञा किसकी है वो बात बताएं। और आहारक शरीर कितने काल तक रहता है, तो अंतर्मूर्त काल के लिए, और अंतर्मूर्त काल के भीतर संचित हुए नौकर्म प्रदेश समुदाय की आहारक शरीर संज्ञा है, इसलिए नारकी जीव के अंतिम समय में ही उत्कृष्ट स्वामित्व देना चाहिए। उसका उत्कृष्ट स्वामित्व कब होगा वैकृत शरीर का, तो उस अंतिम समय में। विशेषार्थ, यहाँ पर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का विचार करते हुए वह एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट किस जीव के होती है, इस बात का विस्तार से निरूपण किया गया है। जिन शरीरों का स्वामी एक ही जीव होता है और उनके आश्रय से अन्य जीव नहीं उपलब्ध होते, उन शरीरों के समुदाय का नाम प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा। ये तो हम द्रव्य वर्गणा जो प्रत्येक शरीर देख रहे हैं, तो उसका मूल में यही उसकी परिभाषा है कि निगोद रहित ऐसी जो प्रत्येक शरीर वर्गणा बताए। और शरीरों के समुदाय यानी वो शरीरों का समुदाय, औदारिक भी लिया हमने सहयोगी अयोगी का, या फिर वैकृत भी ले सकते हैं, और उनके जो कोई 3 शरीर और उसके विश्रसोपचय मिलकर, आगम में ऐसे 8 प्रकार के जीव बतलाए हैं जिनके शरीरों के आश्रय से अन्य जीव नहीं रहते हैं। वे 8 प्रकार के जीव ये हैं: केवली जिन, देव, नारकी, आहारक शरीर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक। यहां सर्वप्रथम यह देखना है इन जीवों में जघन्य प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का स्वामी कौन है, और उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा का स्वामी कौन जीव है। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षपित कर्मांशिक और दूसरे गुणित कर्मांशिक। ये पहले हमने विस्तार से देखा था, क्षपित और गुणित कर्मांशिक की बात हमने देखी थी। जो क्षपित कर्मांशिक जीव होते हैं उनके कर्म वर्गणाएं उत्तरोत्तर ह्रस्व होती जाती है, ह्रस्व ने कम होती जाती है, और अयोगी के अंतिम समय में वे सबसे न्यून होती है। इसलिए अयोगी जिनके अंतिम समय में प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा सबसे जघन्य होती है, क्योंकि कारमान की मुख्यता से लिया, क्योंकि कारमान में वो अनंत गुणा वाली बात है और वो जहां जघन्य है वहां बाकी भी जघन्य होगे। इसलिए अयोगी जिनके अंतिम समय में प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा सबसे जघन्य होती है। यहां इस वर्गणा से औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कर्मण शरीर तथा इनके विश्रसोपचय, इन 6 पुंजों का ग्रहण होता है। गुणित कर्मांशिक जीव वे कहलाते हैं जिनके कर्म वर्गणाएं उत्तरोत्तर महापरिणाम वाली होती जाती है, और 33 सागर की आयु वाले नारकी जीव के अंतिम समय में वे सबसे उत्कृष्ट होती है। इसलिए नारकी जीव के अंतिम समय में प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा सबसे उत्कृष्ट होती है। यहाँ इस वर्गणा से वैकिरिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीर तथा इनके विसरसोपचय, इन छह पुंजों का ग्रहण होता है। मध्य में इस वर्गणा के अनेक विकल्प है जिनका निर्देश मूल में किया ही है, क्योंकि हमने एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए सहयोगी के पहले समय तक लाया था, फिर नारकी में उन्होंने अलग अलग सिद्ध की बात। यहाँ जघन्य वर्गणा, एक परमाणु अधिक जघन्य वर्गणा, दो परमाणु अधिक जघन्य वर्गणा इत्यादि क्रम से वृद्धि करते हुए उत्कृष्ट वर्गणा लाने की विधि जिस प्रकार मूल में बतलाई गई है उस प्रकार उसे जान लेना चाहिए, क्योंकि हमने विसरसोपचय बढ़ाया, फिर अवदारिक शरीर के बढ़ाया, इस तरह से। पहले अंतिम समयवर्ती अयोगी जिनके ही नाना जीवों का आलंबन लेकर जघन्य वर्गणा में परमाणुओं की वृद्धि की गई है। इसके बाद उपांत समयवर्ती अयोगी जिनका आश्रय करके वृद्धि की गई है। इस प्रकार पीछे लौटकर प्रथम समयवर्ती सहयोगी जिन तक आकर वृद्धि का क्रम दिखलाया गया है। इसके बाद देव और देवों के बाद नारकी जीवों को स्वीकार करके प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा अपने उत्कृष्ट विकल्प तक उत्पन्न की गई है। हमने वहां नारकी को देखा था, क्योंकि वो तो हमने मध्यम विकल्प छोड़कर डायरेक्ट उसको ले लिया था। वो मध्य में सब आ जाएंगे, आहार शरीर वाले भी मध्य में चले जाएंगे। ये जो लास्ट वाला उन्होंने लिया है उसके पहले वाले सब आ जाएंगे उसके अंदर। प्रथम समयवर्ती सहयोगी जिनके बाद, देखो लिखा है ना बीच में, आहारक शरीर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक जीवों का ग्रहण इसलिए नहीं किया क्योंकि एक जीव की अपेक्षा, देखो एक जीव की बात है, महत्व की बात है, एक जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा इनके जो प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है उसका ग्रहण मध्य विकल्पों में आ जाता है। जब वो उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा की बात हो, हम अग्निकायकों का समूह लेंगे, परंतु वहां एक जीव नहीं, जितने असंख्या जीव और उनके कर्म, उनके सब तेजस शरीर सब कुछ ले लेना है वहां पर। यहाँ एक जीव की अपेक्षा ये छह प्रदेश पुंजों की बात चल रही है, तो ये सारे मध्य में चले जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा इनके जो प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा होती है उसका ग्रहण मध्यम विकल्पों में आ जाता है। यहाँ जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा लाते समय प्रत्येक स्थल पर गुणकार सब जीवों से अनंत गुणा बतलाया गया है, सो यह कथन संभव सत्य की अपेक्षा से किया गया जानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव के औदारिक शरीर आदि जघन्य वर्गणा से अपनी औदारिक शरीर आदि उत्कृष्ट वर्गणा व्यक्त रूप से सब जीवों से अनंत गुणे परमाणुओं के समुच्चय रूप नहीं होती, कारण कि औदारिक शरीर आदि अपनी जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा का गुणकार अभव्यों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण ही बतलाया जाता है। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा के स्वामी का विचार किया है, यानी वे पॉसिबिलिटी के रूप से उन्होंने एक एक प्रदेश बढ़कर ये बातें बताई। अब एक जीव का अवलंबन लेकर, अभी एक ही जीव का अभी भी चल रहा है, नारकी के अंतिम समय में वृद्धि नहीं है क्योंकि उत्कृष्ट पने को प्राप्त हो गया है। वो अभी हमने जो देखा ना वैकिरिक शरीर के सब लास्ट किया, और फिर भी उसको भी बढ़ाते हुए हमने छह पुंज उत्कृष्ट किए थे। अब उसके आगे उसकी वृद्धि नहीं है, क्योंकि नारकी को अगर हम पूर्व पूर्व समय में कहेंगे वो तो मध्यम विकल्प में चला जाएगा, हमने अंतिम विकल्प को उसको देख लिया है। फिर से पढ़ते, अब एक जीव का अवलंबन लेकर नारकी के अंतिम समय में वृद्धि नहीं है क्योंकि उत्कृष्ट पने को प्राप्त हो गया है, अतः बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त दो जीवों का आलंबन लेकर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा को प्राप्त करते हैं। यथा यहाँ गुणित घोलमान विधि से आए हुए गुणित गोलमाने ने कभी गुणित के गुणित तो नहीं है, क्योंकि गुणित के सभी कंडीशंस पूरी होती वो नारकी के अंतिम समय में जाके। तो कहते वो अन्य जो जीव जो बहुत बार पर्याप्त में उत्पन्न हुआ है, उत्कृष्ट योग किया है वगैरह वगैरह भी है, परंतु अभी वो नारकी में अभी उत्कृष्ट करा के उसको संकलेश नहीं कराया है, तो कहते कि उसको गुणित गोलमान कहा, यानी गुणित की तरफ वाला जीव है। तो गुणित गोलमान विधि से आए हुए ऐसे दो बांदर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीव लो, जिनके शरीर परस्पर में संबद्ध है और जिनमें से प्रत्येक के यानी एक एक के प्रत्येक शरीर वर्गना का संचय नारकी के उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना के संचय से आधा आधा है। आधा है क्योंकि उसके देखो देखो नारकी के उत्कृष्ट बताया था वो गुणित गोलमान है, और ये कैसे है, वो नारकी तो गुणित कर्मांशिक था, गुणित कर्मांशिक था, ये गुणित गोलमान है। हाँ दो जीव लिया, दोनों का आधा आधा मिलकर उसके समान करेंगे, क्योंकि हमें उसके समान करके आगे बढ़ाना है ना एक प्रदेश। अतएव इन दोनों जीवों के प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना का संचय अंतिम समयवर्ती नारकी जीव के वैक्रिक तेजस और कार्मान शरीर के संचय के समान होता है। उसने कर्म को उत्कृष्ट किया था, और इसका तो गुणित गोलमान है ना, इसका उत्कृष्ट नहीं है, पर दो जीवों का मिलकर सब समान बताए प्रदेश पूंजक। यद्यपि वैक्रिक शरीर से औदारिक शरीर असंख्यात गुणाहीन होता है, ऐसे भी औदारिक शरीर के परमाणु कम है, तो भी इन दोनों संचयों के सदृश होने में कोई विरोध नहीं आता, यानी पूरी टोटल अगर संचय देखेंगे तो हम सदृश कह सकते हैं, क्योंकि तेजस और कार्मान शरीरों के रहते हुए वैक्रिक शरीर के असंख्यात में भाग मात्र औदारिक शरीर का द्रव्य उपलब्ध होता है। क्या कहते हैं, यानी वो औदारिक शरीर का द्रव्य कम है, फिर भी तेजस और कार्मान की बात है तो उसमें तो अनंत गुणा का व्यवहार होता है, तो वो गुणित में है, गुणित गोलमान की तरफ से है। अब इन दोनों जीवों में स्थित औदारिक तेजस और कार्मान शरीर के छह पुंजों को पूर्वोक्त विधि से तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक वे दोनों जीवों के योग्य उत्कृष्ट पने को नहीं प्राप्त होते। हमको तो एक एक परमाणु किस तरह से बढ़ाना, पहले एक जीव में बढ़ाएंगे फिर दूसरे जीव में बढ़ाएंगे, इस तरह से दोनों को मिलकर एक एक परमाणु बढ़ा के बताएंगे। वे दोनों जीवों के योग्य उत्कृष्ट पने को नहीं प्राप्त होते। पुनः बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त तीन ऐसे जीव लो जो परस्पर में शरीर से संबद्ध हो, और जिनमें से प्रत्येक का प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना संचय दो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट संचय के तीसरे भाग प्रमाण हो। तीसरा भाग इसलिए लिया कि तीनों का मिलकर उसके समान हो जाता है, इसलिए उनका संचय उक्त दो जीवों के संचय के समान होता है। पुनः उन पूर्वोक्त जीवों को छोड़कर और इनका अवलंबन लेकर पूर्वोक्त विधि से अपने उत्कृष्ट प्रमाण के प्राप्त होने तक द्रव्य की वृद्धि करनी चाहिए, यानी उसमें विश्रसोपचय बढ़ाओ, उसमें औदारिक शरीर बढ़ाओ, तेजस बढ़ाओ, कार्मण बढ़ाओ, ये सब छह पुंज उत्कृष्ट करके वो तीन बादर पृथ्वी कायकों की जो मिलकर जो उसका स्कंद होगा उसको लेना है प्रत्येक शरीर वर्गना को। तो उत्कृष्ट तक ले जाना चाहिए। पुनः
इन पे तीन जीव हो गए तो उनपे तो तेजस और कार्बन तो अनंत गुणा हो जाएगा, तो वो
हाँ पर वो ऐसा लिया कि वन थर्ड वाला यानी वो तीनों मिलकर समान हो जाए, ऐसा लिया। हम ऐसे ही पॉसिबिलिटी लेंगे, तीन इसलिए लिया कि जो दोनों का मिलकर उत्कृष्ट था उतना ही तीनों में मिलकर हो गया, फिर उसमें बढ़ाते गए। पुनः इन तीनों का द्रव्य किनके द्रव्य के समान होता है, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं यथा ऐसे चार बादर पृथ्वी का एक जीव लो जो एक बंधन बद्ध है, और जिनमें से प्रत्येक को तीन बादर पृथ्वी का एक जीवों के उत्कृष्ट संचय के सचय हुआ संचय के चौथे भाग प्रमाण द्रव्य का संचय प्राप्त हुआ है। वो तीनों का जो उत्कृष्ट तक ले गए थे
तो चार में डिवाइड
उतना प्रमाण इन चार में डिवाइड करना है। अतएव इन चारों का संचय उक्त तीनों के संचय के तुल्य है। समझ में आती है बात? अभी इसमें एक एक बढ़ाना और इनको उत्कृष्ट तक ले चलेंगे। इनका इनके भी द्रव्य को उसी क्रम से बढ़ाना चाहिए जिससे इन चारों जीवों का द्रव्य उत्कृष्ट पने को प्राप्त हो जाए। अब क्या करेंगे? फिर वो पांच में बांटते हैं, जो चारों का मिलकर जो है वो पांचों का जो मिलकर होता है। इस प्रकार पांच छ सात आठ नौ और दस से लेकर तत्प्रायोग्य पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के होने तक ले जाना चाहिए। यानी इतने जीवों के शरीरों का इकट्ठा एक स्कंद। पुनः इनके औदारिक तेजस और कार्मन शरीरों को क्रम से बढ़ाकर पुनः एक बंधनबद्ध इतने बादर तेज का एक पर्याप्त जीव लेने चाहिए जो द्रव्य संचय की अपेक्षा एक बंधनबद्ध पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के समान हो। देखो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ क्या कहा अश्विन भाई, बता सकते हैं? हम एक बंधनबद्ध पृथ्वी का एक कितने लिए पर्याप्त पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। अब कहते हैं एक बंधनबद्ध तेज का ही कितने लोग कि उनका पूरा संचय उसके समान हो। किसके समान? पृथ्वी का एक।
तो ये यहाँ पे वायु का एक जो है वो मध्यम में चले जाएंगे सभी।
अभी वायु का एक की कहाँ बात आई? अभी अग्नि का एक लिया है, वायु का एक का भी नाम नहीं लिया। एक बंधन बद्ध कितने जीव लेना है वो उसकी बात है। देखो फिर से, यानी हमने वो मैक्सिमम उसका स्कंद होने तक ले लिया मादर पृथ्वी का एक पल्ले का असंख्यात विभाग बताए ना। मैं इतने लेना ऐसा लिया उन्होंने। फिर से पढ़ती हूँ मैं, नीचे से जो हमने देखा था एक दो तीन चार पांच छह लाइन में तत्प्रायोग्य पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के होने तक ले जाना चाहिए। सबका मिलकर बड़ा स्कंद इतना होने तक ले गए। अभी आगे पुनः इनके औदारिक तेजस और कार्मन शरीरों को क्रम से बढ़ाकर पुनः एक बंधनबद्ध इतने बादर तेज का एक पर्याप्त जीव लेने चाहिए जो द्रव्य संचय की अपेक्षा एक बंधनबद्ध पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के समान हो। समझ में आई बात?
तो यहाँ पे जीव की संख्या इतनी लेनी है कि परमाणुओं की संख्या इतनी लेनी
है? इतने जीव लेने चाहिए। क्या लिखा? एक बंधनबद्ध इतने बादर तेजक का एक पर्याप्त जीव लेने चाहिए कि उनका सबका संचय इनके समान हो जावे। पुनः इनका आश्रय करके पूर्वोक्त विधि से इनके औदारिक तेजस और कार्मन शरीरों को अनुपूर्वी से बढ़ाकर यानी क्रम से एक एक बढ़ाकर पुनः एक जीव को अधिक करते हुए। अभी क्या कहा करना? वहां जैसे हमने शुरुआत में हमने एक बादर पृथ्वी का एक लिया, फिर दो लिए, फिर तीन लिए, फिर ऐसे पल्ले के असंख्यात विभाग लिए। अब यहाँ शुरुआत में अनेक अग्नि का एक लिए थे, अब उनको एक 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 से बढ़ाते हुए जब तक एक बंधनबद्ध बादर तेजस का एक पर्याप्त जीव आवली वर्ग से असंख्यात गुणे नहीं हो जाते।
सो पल्ले का असंख्यात वर्ग इनटू आवली का असंख्यात भाग का वर्ग आवली के वर्ग से
असंख्यात गुणा है। जब तक एक बंधनबद्ध संख्या जीवों की संख्या ली एक बंधनबद्ध बादर तेजस का एक पर्याप्त जीव आवली वर्ग से असंख्यात गुणे नहीं हो जाते। तब तक इनकी संख्या और उसी क्रम से द्रव्य को बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए, अथवा एक बंधनबद्ध तत्प्रायोग्य असंख्यात जीव लेने चाहिए, यानी तत्प्रायोग्य असंख्यात जीव लेना कहते, क्योंकि देवकृत झाड़ियों में लगी हुई अग्नि में बादर तेजस का एक पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के एक स्थान में एक बंधनबद्ध होने में कोई विरोध नहीं आता। यानी देवों ने जो झाड़ियों में आग लगाई है उसमें ये सब पर्याप्त अपर्याप्तों का एक बंधनबद्ध हो सकते हैं। शंकाकार पूछते, एक बंधनबद्ध वे जीव कहाँ उपलब्ध होते हैं? समाधान, लताओं का दाह होते समय, देवकृत झाड़ियों में या महावन का दाह होते समय एक बंधनबद्ध उक्त जीव उपलब्ध होते हैं। यानी उसमें कोई अपर्याप्त भी है और पर्याप्त भी, बस इतना ही लेना है उसके अंदर, क्योंकि वो देवों ने लगाई है तो वो तो सब सभी उसमें जलेगी, तो उसमें वो तो पर्याप्त पर्याप्त सब आ जाएंगे। पुनः इनके औदारिक तेजस और कार्मन शरीरों के पृथक पृथक बढ़ाने पर प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा उत्कृष्ट होती है। यहाँ जघन्य वर्गणा से उत्कृष्ट वर्गणा असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? पल्योपम का असंख्यात वा भाग गुणकार है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, देव, नारकी, आहारक शरीरी, आहारक शरीरी प्रमत्त संयत, यहाँ जाके फुल स्टॉप देना, बीच में नहीं चाहिए। आहारक शरीरी प्रमत्त संयत, संयोगी केवली और अयोग केवली, ये जीव प्रत्येक शरीर वाले होते हैं, क्योंकि इनका निगोद जीवों के साथ संबंध नहीं होता। विग्रह गति में विद्यमान बादर निगोद जीव और सूक्ष्म निगोद जीव प्रत्येक शरीर वाले नहीं होते हैं, क्योंकि निगोद नाम कर्म के उदय के साथ गमन होने के कारण विग्रह गति में भी एक बंधनबद्ध अनंत जीवों का समूह पाया जाता है।
तो सभी तो नहीं है, पर अनंत जीव एक साथ जाते
हैं। अनंत जीवों का बंधन है, क्योंकि इस पर ऐसे भी ले सकते हैं ना, एक समय में भी अनंत जीव मरकर एक शरीर से निकलते हैं, वो अन्यत्र चले जाते हैं, हो सकता है अलग अलग में चले जावे, पर विग्रह गति में एक बंधन, तब तक तो बंधन बद्ध हुए है। ऐसा भी हो सकता है वही उत्पन्न हो, वो सारे के सारे अन्यत्र कहीं चले जाए और उसका वहां उत्पन्न हो जावे, यानी वो एक बंधन बद्ध अनंत जीवों का समूह पाया जाता है, बस इतना ही है। यदि विग्रह गति में वर्तमान अशेष जीव प्रत्येक शरीर होते ऐसा माना जाए तो प्रत्येक वर्गणाएं अनंत हो जावे, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि वे असंख्यात लोक प्रमाण होती है, ऐसा अविरुद्ध भाषी आचार्यों के वचनों से जाना जाता है। क्या कहना चाहते हैं? निगोद को छोड़कर बाकी जो जीव है, जो अन्य कायिक वाले भी, जो असंख्यात लोग ही होते, ज्यादा तो नहीं होते हैं, और एट ए टाइम मरने वाले या कारमान का युग में वो इतने ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। शंकाकार पूछते हैं, विग्रह गति में शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता, इसलिए वहां न तो प्रत्येक शरीरपना प्राप्त होता है और न साधारण शरीरपना ही प्राप्त होता है, इसलिए वे प्रत्येक शरीर बादर और सूक्ष्म निगोद वर्गणाओं में से किन्हीं में भी अंतर्भूत नहीं होती है। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि विग्रह गति में बादर और सूक्ष्म निगोद नाम कर्मों का उदय दिखाई देता है। शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, परंतु बादर या सूक्ष्म, साधारण या प्रत्येक, इसका नाम प्रत्येक का तो नहीं उदय, परंतु बादर सूक्ष्म का उदय है, इसलिए वहां पर भी बादर और सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गणाएं उपलब्ध होती है। और इनसे अतिरिक्त जिन्होंने शरीरों को ग्रहण किया कर लिया है या नहीं ग्रहण किया है, वे सब जीव प्रत्येक शरीर वर्गणा वाले होते हैं, इसलिए प्रत्येक शरीर वर्गणाएं असंख्यात लोक प्रमाण होती है, यह सिद्ध होता है। फिर शंका कर, एक बंधन बद्ध वे जीव असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। यदि कहो कि यह बात किस प्रमाण से जानी जाती है, स्वयं ही उसका उत्तर देना चाहते हैं, तो इसका समाधान यह है कि ईषत प्रागभार पृथ्वी में बादर पृथ्वी का एक जीव असंख्यात लोक प्रमाण होते हुए भी सबसे स्तोक होते हैं। इनसे एक जल बिंदु में जल का एक जीव असंख्यात गुणे होते, क्या कहा? पूरी ईषत प्रागभार जो है 8 योजन मल्टीप्लाइड बाय 1 राजू × 7 राजू, इनसे एक अंगारे में अग्नि का एक जीव असंख्यात गुणे होते हैं।
ये मैंने इसीलिए पूछा था, आगे जो पूछा था ना कि जो जल का एक की जो है वो मध्यम में चले जाएंगे,
क्योंकि हाँ बिल्कुल जाएंगे ना, अवगाहना की बात है ना उसमें। यहाँ तो जीवों की संख्या की बात है, कहाँ कितने होते, एक बिंदु में कितने जीव, एक बिंदु में कितने हैं, देखो इनसे एक साथ जुड़े हुए की बात है ना। इनसे एक अंगारे में अग्नि का एक जीव असंख्यात गुणे होते हैं, इनसे एक जल के बुलबुले में वायु का एक जीव असंख्यात गुणे होते हैं। इस प्रकार इस अल्पभूतव सूत्र से यह बात जानी जाती है। इसलिए समझ में आई ना बात, वहां पर भी बादर पृथ्वी का एक को बढ़ाते बढ़ाते असंख्यात लोक लिए, फिर बाद में उन्हें वहां पर हमने अग्नि का एक की बात ली थी डायरेक्ट, बीच वाले मध्यम में ले लेते हैं। इसलिए पल्ल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण एक बंधन बद्ध जीवों के अवलंबन से एक उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गणा होती, यह बात घटित नहीं होती। यह देखो, ये पहले उन्होंने कहा कितने जीव है बात बताई, और यहाँ तो बात अपनी एक बंधन बद्ध जीवों की बात चल रही है, एक बंधन में बद्ध वाले। ऐसे अनेक स्कंद वहां हो गए एक बंधन में, जो बंधन नहीं है। ये असंख्यात लोक प्रमाण जीव भले वो पूरे एक ईषत प्रागभार में है, परंतु सारे एक बंधन में बद्ध नहीं है। यही बात बता रहे समाधान में, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि ईषत प्रागभार शिला में एक जल बिंदु में एक अंगारे में और जल के एक बुलबुले में अलग अलग असंख्यात लोक प्रमाण जीवों के होने पर भी वहां मात्र तेजस का एक पर्याप्त जीव ही एक बंधन बद्ध उपलब्ध होते हैं, बाकी उनके भी अनेक स्कंदों का वो एक बिंदु दिख रहा है, केवल अग्नि का एक में ही एक बंधन बद्ध उपलब्ध होते हैं। इसलिए हमने वहां पर डायरेक्ट अग्नि का एक को लिया था। अंगारे नहीं चिंगारी, चिंगारी कहो, अंगारा कहो, अंगारा नहीं कोयला वगैरह हो गए ना, वहां तो पूरा अंगारा लिया है। एक बंधन बद्ध की बात चल रही है, एक बंधन में बद्ध इतना ही लेना है, सबका मिलकर एक बंधन होना चाहिए।
तो यहाँ पे इसे बताइए, तेजस का एक पर्याप्त जीव ही एक बंधन बद्ध उपलब्ध होते, तो अपर्याप्त जीव एक बंधन बद्ध ही होते,
उसमें अपर्याप्त आ जाते जो देवकृत अग्नि में उन्होंने पहले बताए थे। तो यहाँ कहा वो तो अपने विषय नहीं ना, हमें दिखता है एक, परंतु उसमें एक बंधन में बद्ध जीवों का प्रमाण वो तो केवल ही जानेंगे, ख्याल में आती ना, बंधन बद्ध है। नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण होने पर भी तेजस का एक पर्याप्त जीव ही एक बंधन बद्ध होते हैं, बाकी पल्ले के असंख्यात पे भाग ही एक बंधन बद्ध है, ये कहना चाहते। असंख्यात लोक प्रमाण भले उनके वहां दिखते हैं, परंतु वो एक बंधन में बंध नहीं है।
मान वायु का एक और जल का एक है, वो पल्ले के असंख्यात पे भाग है।
देखो ऐसे जो ऐसा ये मिलकर ये ऐसा एक स्कंद रूप से दिख रहा है, परंतु एक बंधन बद्ध इतने ही है, वो सबका मिलकर असंख्यात लोक हो जाए, पर एक बंधन में पल्ले के असंख्यात भागी है। इस तरह
अग्नि का एक में एक बंधन बद्ध में असंख्यात लोक प्रमाण जीव,
ऐसा नहीं लिखा है उन्होंने, मात्र तेजस का एक पर्याप्त जीव एक बंधन बद्ध उपलब्ध होते हैं, क्योंकि पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण उन्होंने बादर पृथ्वी का एक को लिया था, और फिर तेजस का एक के लिए जितने असंख्यात हो इतना ही लिया था। आवली वर्ग से असंख्यात गुणे बताया था या यथा योग्य असंख्यात बताया था। एक दो तीन लाइन पढ़ के ये सत्रहवीं वर्गना तक हो जाते, फिर विशेषार्थ बाद में पढ़ेंगे। एक बंधन बद्ध इतने ही जीव उपलब्ध होते, अधिक नहीं होते, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? तो कहते हैं अविरुद्ध आचार्यों के वचनों से जाना जाता है, और वे तेजस कायिकों में ही बहुत उपलब्ध होते हैं, अन्यत्र नहीं उपलब्ध होते। इसलिए लता दाह आदि में एक अंगारा ही प्रधान किया है। वहां गुणित कर्मांशिक जीव यदि बहुत होते हैं तो आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही होते हैं, बाकी के सब गुणित कर्मांशिक नहीं होते। यानी वहां वो जो आवली के वर्ग की बात की थी वहां पर, परंतु उसमें उसका समूह होने पर भी वहां गुणित कर्मांशिक रूप से कितने हो सकते हैं? तो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण। यह सत्रहवीं वर्गना है। अब उसका विशेषार्थ अभी हम जब लौटेंगे 7 सितंबर को लेंगे, अपने दश लक्षण होने के बाद। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो